पृष्ठ संख्या 36, अध्याय 4, राग शहाना। प्रस्तुत राग शहाना के विषय में कतिपय विद्वानों का कहना है कि यह राग फारस का यानी पर्शियन है और मुस्लिम गायकों द्वारा हमारे यहाँ प्रचार में आया है। इसके विपरीत कुछ विद्वानों का कहना है कि हमारे संस्कृत ग्रंथों में वर्णित शोभना राग को आजकल शहाना राग कहते हैं। यद्यपि उपरोक्त दोनों मतों की पुष्टि हेतु कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है, परंतु यह सत्य है कि प्रस्तुत राग अपने यहाँ मंगलमय पावन पर्वों व शुभ अवसरों पर गाया बजाया जाता है। इस हेतु संस्कृत ग्रंथों के शोभना से इसका अधिक निकट का संबंध प्रतीत होता है। वस्तुतः प्रचलित राग शहाना कान्हड़े का प्रकार तथा काफी थाट जन्य है। इसमें गंधार कोमल, निषाद दोनों तथा अन्य स्वर शुद्ध हैं। कुछ लोग इसके आरोह में धैवत को वर्जित मानकर इसकी जाति षाडव संपूर्ण मानते हैं, परंतु कुछ विद्वान इसके आरोह में भी धैवत का प्रयोग करके इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण मानते हैं। इस राग में पंचमवादी एवं षड्ज संवादी है। यह एक उत्तरांग प्रधान राग है और इसका गायन समय रात्रि के द्वितीय प्रहर का अंतिम चरण एवं तृतीय प्रहर का प्रथम चरण है। कान्हड़ा का प्रकार होने के कारण यह नायकी, सूहा, देवसाक आदि कान्हड़ा के प्रकारों से कुछ अंशों में मिलता है, परंतु मुख्य रूप से इसका संप्रकृत राग सुगरई कान्हड़ा है। प्रस्तुत राग का मुख्य स्वरूप इस प्रकार है, यथा कोमल नी ध कोमल नी प ध म प तार सा ध कोमल नी प म प म कड़ित कोमल ग अ म प कोमल ग म सा रे सा म प कोमल ग म ध ध कोमल नी प म प शुद्ध नी तार सा कोमल नी ध कोमल नी प इत्यादि। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह राग दरबारी कान्हड़ा और मेघ के मिश्रण से बना है, किंतु यह राग कान्हड़ा का प्रकार है, इस हेतु कान्हड़ा से संबंधित होना स्वाभाविक है। जैसे कोमल ग अ म सा कड़ियुक्त रे सा म प कोमल नी कड़ियुक्त प शुद्ध नी तार सा प कड़ियुक्त कोमल नी प इत्यादि। परंतु मेघ राग का संयोग इस राग में कहीं नहीं दिखता है। हाँ, तार सा कोमल नी प व म प शुद्ध नी तार सा स्वर समूह से सारंग अंग अवश्य दिखता है, जो कान्हड़ा के प्रकार के अधिकतर रागों में स्वाभाविक रूप से दिखता है। प्रचलित शहाना पूर्ण रूप से उत्तरांग प्रधान राग है। इसका स्वरूप उत्तरांग में ही स्पष्ट होता है, यथा कोमल नी ध कोमल नी प ध म प कोमल ग म ध ध कोमल नी प म प तार सा कोमल नी प या कोमल नी ध कोमल नी प ध म प तार सा नी ध कोमल नी प। इसी स्वर समूह से पूर्वांग की ओर कोमल ग म सा कड़ियुक्त रे सा यह कान्हड़ा का मुख्य स्वर समूह मिलाकर इसको कान्हड़ा का प्रकार बनाया जाता है। पृष्ठ संख्या 37। उत्तरांग में कोमल ग म ध स्वर समूह से बागेश्वरी व कोमल नी प म प कोमल ग म सा कड़ियुक्त रे सा से कान्हड़ा सा म प म कड़ियुक्त कोमल ग अ म से बाहर और तार सा ध कोमल नी प व कभी कभी म प ध कोमल नी तार सा स्वर समूह के प्रयोग से मियां मल्हार का आभास तथा म प कोमल नी प शुद्ध नी तार सा से सारंग अवश्य दिखता है। यहाँ एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि शुद्ध गंधार के साथ जब तार सा ध कोमल नी प का प्रयोग होता है तो यह स्वर समूह बिलावल अंग का माना जाता है, परंतु जब कोमल गंधार के साथ इसका प्रयोग होता है तो यह स्वर समूह मियां मल्हार का ही माना जाता है। उक्त विवरण का अभिप्राय यह है कि राग के स्वरूप को देखते हुए राग में कान्हड़ा, बाहार, बागेश्वरी, सारंग का मिश्रण मानना ही उचित लगता है। मियां मल्हार का तो आभास मात्र समझना चाहिए। जहाँ तक इन मिश्रण वाले रागों को मिलाने का प्रश्न है, वह इस भांति मिलाया जाता है, यथा प कोमल ग म सा कड़ियुक्त रे सा कान्हड़ा के इस स्वर समूह के बाद अक्सर सा ध ध कोमल नी प स्वर समूह प्रयोग किया जाता है। सा म प म कड़ियुक्त कोमल ग म बाहर के इस स्वर समूह के बाद कोमल ग म ध ध बागेश्वरी का अंग सामने लाकर कोमल नी प म प तार सा पुनः कान्हड़े के सामने लाया जाता है। इसके बाद तार सा कोमल नी प ध म प तार सा शाहाना के इस विशेष स्वर संगति को सम्मुख लाकर तथा तार षड्ज पर जाने आने के लिए म प कोमल नी प नी तार सा कोमल नी प इस भांति सारंग के स्वर समूह का प्रयोग करके राग स्वरूप को पूर्ण किया जाता है। इसके अतिरिक्त मल्हार के आभास वाले स्वर समूह तार सा ध कोमल नी प को अवरोह में प्रयोग करने के बाद म प तार सा तथा म प ध शुद्ध नी तार सा को प्रयोग करने के बाद कोमल नी प म कड़ियुक्त कोमल ग अ म ध ध कोमल नी प कान्हड़ा तथा बागेश्वरी के इस मिश्रित स्वर समूह को गाया जाता है। उपरोक्त ढंग से राग को मिलाने से मिश्रण वाले राग का स्वाभाविक रूप से सामंजस्य बना रहेगा। कुछ लोग इस राग में सा म प म कड़ियुक्त कोमल ग अ म स्वर समूह का प्रयोग बार बार करते हैं, परंतु मेरी राय से इस स्वर समूह का बार बार प्रयोग इस राग में करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे बाहर अंग अधिक होने लगता है जो प्रस्तुत राग के हित में नहीं है। सा म प म कड़ियुक्त कोमल ग अ म स्वर समूह के बाद हमेशा ही म ध ध कोमल नी प इस स्वर को प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बागेश्री राग कान्हड़ा के प्रभाव से ढका ही रहता है और सारंग तथा मल्हार का आभास भी तार सा कोमल नी प ध म प तार सा शहाना के इस विशेष स्वर संगति के प्रभाव से राग में प्रभावहीन ही रहता है। इस राग में कोमल नी प ध म प तार सा यह स्वर इतना प्रबल है कि इसके बिना शहाना राग का स्वरूप ही समक्ष नहीं आता। यह स्वर समूह किसी अन्य राग का नहीं है। यह शाहाना राग का निजी विशेष स्वर समूह है जो राग के स्वरूप को स्थिर बनाए रखता है। पृष्ठ संख्या 38। आज से 25 वर्ष पूर्व जिस भांति इस राग का स्वरूप था, उससे इसका वर्तमान स्वरूप कुछ भिन्न हो गया है। मुख्य भिन्नता धैवत को लेकर है। इसमें पहले धैवत का प्रयोग अल्प किया जाता था। पंडित भातखंडे जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, इस राग में धैवत बिल्कुल दुर्बल है। इसके अतिरिक्त इस राग की पुरानी बंदिशों में भी धैवत का अल्पत्व दृष्टिगोचर होता है, परंतु आजकल इस राग में धैवत न्यास युक्त होकर प्रयुक्त होता है, जो कि अत्यंत मधुर एवं कर्णप्रिय होने के साथ ही संप्रकृत रागों से भिन्न रखने में सहायक होता है। यथा प म कड़युक्त कोमल ग अ म सा कड़युक्त रे सा म प कोमल ग म ध ध कोमल नी प तार सा कोमल नी ध कोमल नी प प म कड़युक्त कोमल ग अ म ध ध कोमल नी ध कोमल नी प ध म प म कड़युक्त कोमल ग अ म सा कड़युक्त रे सा तार सा ध ध कोमल नी प म कड़युक्त कोमल ग अ म ध ध कोमल नी प म प तार सा इत्यादि। उत्तरांग प्रधान होने के कारण इस राग का प्रारंभ अधिकतर पंचम से ही किया जाता है, यथा प कोमल ग अ म सा कड़युक्त रे सा कोमल नी ध कोमल नी प प तार सा। इस राग में मध्य षड्ज से पंचम की ओर जाने के लिए सा म म प कोमल ग म कोमल नी प या सा रे ग कोमल अ म सा कड़युक्त रे सा प कोमल ग म कोमल नी प इस प्रकार का स्वर समूह प्रयोग करते हैं। उत्तरांग में पंचम व तार षड्ज के मध्य में कोमल नी प ध म प तार सा व म प कोमल नी प तार सा अथवा म प कोमल नी प कोमल नी तार सा प कड़युक्त कोमल नी प कोमल ग म ध ध कोमल नी म प तार सा ध कोमल नी प इस प्रकार के स्वर समूहों का प्रयोग किया जाता है। इसमें तार सा ध सामा कोमल नी म प तार सा ध कोमल नी प इत्यादि स्वर संगतियां बार बार प्रयोग की जाती हैं। कान्हड़ा का प्रकार होने के कारण अन्य कान्हड़ा प्रकार इसके संप्रकृत तो हैं ही, परंतु सुघराई का धैवत युक्त प्रकार इससे अधिक सन्निकट है, चूंकि इन दोनों रागों में धैवत का महत्व भिन्न भिन्न है। इस कारण दोनों राग एक दूसरे से अलग दिखते हैं। कान्हड़ा के पंच प्रकारों की समता व विभिन्नता को जानने के लिए कान्हड़ा के इन सभी प्रकारों का अध्ययन भली भांति करना चाहिए। इस राग की जाति के संबंध में प्रचार में मतभेद है। कुछ लोग इसकी जाति आरोह में धैवत वर्जित करके षाड़व संपूर्ण मानते हैं। कुछ लोग आरोह में भी धैवत का प्रयोग करते हैं और इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण मानते हैं। जो विद्वान आरोह में धैवत वर्जित मानते हैं वे कोमल ग म ध ध कोमल नी प व म प ध कोमल नी तार सा स्वर समूहों का प्रयोग नहीं करते हैं। वे लोग केवल कोमल नी ध कोमल नी प इस प्रकार अवरोह में धैवत का अल्प प्रयोग करते हैं। यद्यपि यह दोनों प्रकार अपने निकट के रागों से भिन्न है, फिर भी मधुरता व रंजकता की दृष्टि से संपूर्ण संपूर्ण प्रकार अधिक आकर्षण युक्त है, क्योंकि इस प्रकार में धैवत का प्रयोग जो दीर्घ तथा न्यास युक्त है, राग के स्वरूप को ज्योति प्रदान करता है। इस हेतु लेखक इसी संपूर्ण संपूर्ण जाति का अनुयायी है। पृष्ठ संख्या 39, स्वरों का प्रयोग तथा स्थान। वस्तुतः मध्य षड्ज अन्य सभी स्वरों की उत्पत्ति का कारण है। इस हेतु राग में इसका सर्वश्रेष्ठ स्थान है ही। ऐसे इस राग के स्वरूप को देखते हुए मध्य षड्ज से तार षड्ज का ही अधिक महत्व दिखता है। तार षड्ज का लगाव देखते हुए राग में इसी स्वर को संवादी होना चाहिए, परंतु वादी संवादी स्वर के लिए ऐसा नियम है कि यदि वादी पूर्वांग में है तो संवादी उत्तरांग में या इसके विपरीत होना चाहिए। चूंकि वादी स्वर पंचम इस राग में उत्तरांग का स्वर है, इस कारण मध्य षड्ज को ही संवादी का स्थान प्रदान किया गया है। ऋषभ इस राग में कोमल ग म सा कड़युक्त रे सा इस भांति कान्हड़ा अंग से षड्ज से स्पर्श युक्त तथा आरोह में सा रे म कड़युक्त कोमल ग अ म रे सा इस भांति प्रयुक्त होता है। साम की स्वर संगति में इसका लंघन भी होता रहता है। इस लगाव को देखते हुए प्रस्तुत राग में ऋषभ का अनाभ्यास एवं लंघन दोनों प्रकार का अल्पत्व दृष्टव्य है। गंधार प्रस्तुत राग में कान्हड़ा के अन्य प्रकारों की ही भांति आंदोलित होकर तथा अवरोह में कोमल ग म रे सा इस प्रकार वक्र प्रयुक्त होता है। कान्हड़ा के इन पंच प्रकारों में गंधार के संबंध में एक बात ध्यान देने योग्य है कि इन सभी रागों में सारे कोमल ग म प इस प्रकार गंधार का आरोहात्मक प्रयोग आलाप या द्रुत तानों में कम ही किया जाता है। जहां तक बन पाता है, राग के स्वरूप को स्थिर रखते हुए गंधार का प्रयोग अवरोहात्मक क्रम से ही अधिक किया जाता है, यथा प कोमल ग म रे सा कोमल नी प म प कोमल ग म रे सा तार सा प कोमल नी प म प कोमल नी कोमल ग म रे सा। सुहा को छोड़कर इन सभी कान्हड़ों में द्रुत तान के समय रेमा प स्वर संगति के प्रयोग की एक प्रथा बन गई है। इस प्रकार आरोह में तो इस स्वर का अधिकतर लंघन ही दिखता है। ऐसे सुहा नाइकी सुघरई इन रागों में गंधार का न्यास बहुत्व है, परंतु शहाना राग में गंधार न्यास युक्त नहीं है। हाँ, कान्हड़ा की दृष्टि से यह आवश्यक स्वर अवश्य है। चूंकि यह राग उत्तरांग प्रधान है और मुख्य रूप से इसका मुख्यांग उत्तरांग में मौजूद है, इस हेतु कान्हड़ा की पुष्टि के लिए जैसे कोमल नी ध कोमल नी प ध म प तार सा प कड़युक्त कोमल नी प म प प कड़युक्त कोमल ग अ म सा कड़युक्त रे सा कोमल ग म ध ध कोमल नी प इस भांति गंधार का प्रयोग किया जाता है। ऋषभ से आगे बढ़ने के लिए सा रे म कड़युक्त कोमल ग अ म कोमल नी प इस प्रकार होता है। इसके आगे कोमल ग म ध ध कोमल नी प स्वर समूह प्रयोग किया जाता है। साम की संगति में इसका लंघन भी दिखता है, परंतु साम के बाद तत्काल कोमल ग म कोमल नी प व कोमल ग म ध ध कोमल नी प संगति में गंधार सम्मुख आता ही रहता है। द्रुततानों में कभी कदार रेमा प की चलन होने से भी इसका लंघन सामने आता है, परंतु कोमल ग म कोमल नी प व कोमल ग म ध स्वर संगति से यह लंघन दोष दूर होता रहता है। अभिप्राय यह है कि कानड़ा के अन्य प्रकारों की भांति प्रस्तुत राग में गंधार का न्यास बहुत्व का स्थान तो नहीं है, परंतु इस राग में इसके प्रयोग को देखते हुए अभ्यास बहुत्व का स्थान उचित तथा उपयुक्त ही दिखता है। पृष्ठ संख्या 40। इस राग में मध्यम कोमल ग म प कोमल ग म सा कड़ियुक्त रे सा इस भांति प्रयुक्त होता है। आरोह में तो मध्यम का सीधा प्रयोग कोमल ग म प इस भांति होता है, परंतु अवरोह में प कोमल ग म सा कड़ियुक्त रे सा इस लगाव में प कोमल ग की संगति में इसका लंघन बराबर होता रहता है। राग के आलाप व स्थाई अंतरे में इस स्वर का दीर्घ प्रयोग भी दृष्टव्य होता है, यथा सा म प म कड़युक्त कोमल ग अ म कोमल नी ध कोमल नी प। स्थाई अंतरे में अंतिम चरण की समाप्ति अधिकतर कोमल नी ध कोमल नी प म प म कड़युक्त कोमल ग अ म इसी स्वर समूह द्वारा होती है, जिसमें मध्यम न्यास युक्त दिखता है। परंतु आलाप में यह स्वर न्यास युक्त नहीं है। मध्यम व कोमल निषाद की संगति भी बार बार सामने आती रहती है, यथा कोमल नी म प म कोमल नी प कोमल ग म कोमल नी प। इस भांति राग में इसके प्रयोग को देखते हुए राग में इसको दीर्घ तथा अभ्यास बहुत्व का स्थान कहेंगे। प्रस्तुत राग में पंचम आंशिक न्यास बहुत्व का स्वर है। प म कड़युक्त कोमल ग अ म कोमल नी प कोमल ग म सा कड़युक्त रे सा कोमल नी ध कोमल नी प ध म प कोमल ग म ध ध कोमल नी प म कड़युक्त कोमल ग म कड़युक्त कोमल ग म प म कोमल नी प तार सा प कोमल नी प म प तार सा ध कोमल नी प। इस प्रकार अवरोहात्मक क्रम में इस पर बराबर न्यास हुआ करता है। आरोह में पंचम पर न्यास नहीं होता, इस हेतु आंशिक न्यास होते हुए भी पंचम का इस राग में एकांगी न्यास बहुत्व है। धैवत इस राग में म कड़युक्त कोमल ग अ म ध ध कोमल नी प ध म प तार सा कोमल नी ध कोमल नी प म प कोमल ग अ म ध ध कोमल नी प शुद्ध नी तार सा तार रे तार सा ध कोमल नी प कोमल नी प म प कड़ियुक्त कोमल ग अ म रे सा तार सा ध ध कोमल नी प म कड़ियुक्त कोमल ग अ म ध ध इस भांति प्रयुक्त होता है। कभी कभी कोमल नी म प ध कोमल नी तार सा कोमल नी ध कोमल नी प इस भांति आरोही क्रम में सीधा भी प्रयुक्त हो जाता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि जो लोग आरोह में धैवत वर्ज्य मानते हैं वे ऐसा नहीं करते हैं। अवरोह में यह स्वर हमेशा ही गंधार की ही भांति वक्र प्रयुक्त होता है, यथा कोमलनी ध कोमलनी प व तार सा ध कोमलनी प। इसके अतिरिक्त तार सा प कड़ियुक्त कोमलनी प स्वर संगति में इस स्वर का लंघन भी होता रहता है। राग में संपूर्ण लगाव को देखते हुए इस स्वर का राग के आरोह में तो न्यास बहुत्व है, परंतु अवरोह में यह स्वर वक्र होकर अनाभ्यास व लंघन अल्पत्व के रूप में ही प्रयुक्त होता है। पृष्ठ संख्या 41। राग शाहाना में दोनों निषादों का प्रयोग है, परंतु शुद्ध निषाद की अपेक्षा कोमल का बाहुल्य है, यथा सा कोमलनी ध कोमलनी प कोमलनी कोमलनी प म प म कड़ियुक्त कोमल ग अ म कोमलनी प कोमलनी म प तार सा ध कोमलनी प इत्यादि, जबकि शुद्ध निषाद का म प कोमलनी प शुद्ध नी तार सा व कभी कदाचित म प ध शुद्ध नी तार सा स्वर समूह में प्रयुक्त होता है। ध म प तार सा व कोमल नी म प तार सा प कोमल नी प इस भांति पंचम व तार षड्ज एवं तार षड्ज व पंचम की संगति में निषाद का लंघन भी बार बार होता है। उपरोक्त प्रयोग को दृष्टिपथ में रखते हुए हम कह सकते हैं कि दोनों निषादों यानी शुद्ध नी और कोमल नी का लंघन व अनभ्यास दोनों ही प्रकार का अल्पत्व दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार यह एक संकीर्ण जाति का राग होने पर भी अत्यंत मधुर तथा लोकप्रिय है। आरोह सा रे कोमल ग म प कोमल नी ध कोमल नी प शुद्ध नी तार सा। अवरोह तार सा कोमल नी ध कोमल नी प म प कोमल ग म रे सा। मुख्य स्वर समुदाय कोमल ग म ध ध कोमल नी प ध म प तार सा कोमल नी प म कड़ियुक्त कोमल ग अ म सा कड़ियुक्त रे सा।